शांति किस कदर सीधा सहल साफ है यह रास्ता देखो, किस कदर सीधा सहल सहल अर्थात सहज साफ है यह रास्ता देखो। न किसी शाख का साया है, न दीवार की टेक, न किसी आग की आहट, न किसी चेहरे का शोर, न कोई दाग जहां बैठ के सुस्ताए कोई, दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चंद कदमों के निशा, हां कभी मिलते हैं कहीं, साथ चलते हैं जो कुछ दूर, फकत चंद कदम, और फिर टूट के गिरते हैं यह कहते हुए, अपनी तन्हाई लिए आप चलो तन्हा अकेले। साथ आए जो यहां कोई नहीं, कोई नहीं, किस कदर सीधा सहल साफ है यह रास्ता देखो। यह रास्ता बहुत सीधा है, यह रास्ता बहुत सरल है, यह रास्ता बहुत ही साफ है, परंतु यहां किसी का साया नहीं है, कोई दीवार की टेक नहीं है, कोई आग की आहट नहीं, कोई चेहरे का शोर नहीं, दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर कोई चंद कदमों के निशा भी मिल जाते हैं, परंतु फकत चंद कदम, और फिर टूट के गिरते और क्या कहते हैं, अपनी तन्हाई लिए आप चलो, तन्हा अकेले। साथ आए जो यहां कोई नहीं, कोई नहीं, किस कदर सीधा साफ है यह रास्ता, देखो यह रास्ता अकेले का है, तन्हा है। यहां जो कुछ करना है खुद को करना है। दूसरों का प्रकाश कब तक मुझे प्रकाशित करेगा, दूसरों की रोशनी में कब तक मैं चलूंगा, किसी के साये में कब तक चलूंगा, किसका हाथ कब तक थामे रहूंगा। सबको अपनी अपनी मंजिल पर जाना है, साथ ही यहां कोई नहीं। ये सारे लोग चंद कदमों तक साथ है, बस। महात्मा बुद्ध का जाने का समय आया, 40 साल से अधिक पृथ्वी पर घूमते रहे, परिव्राजक की तरह, सन्यासी की तरह शिक्षाएं देते रहे, लोगों को समझाते रहे, और जहां वो जाते उनके साथ एक बहुत बड़ा समूह, संघ साथ साथ चलता। उनमें से उनका शिष्य था आनंद, वो तो लगभग 40 साल तक पग पग उनके साथ था, उन्हीं के साथ रहता, उन्हीं के साथ खाता, उन्हीं के साथ सोता। और जब महात्मा बुद्ध के जाने का समय आया तो सबने कहा कि कुछ बताए, कुछ समझाए, कुछ अंतिम उपदेश। और कुछ कुछ सभा में थे जो चुपचाप बैठे थे, उन्हें कुछ पूछना नहीं था, पर कुछ कुछ जो थे वो दुख की दहाड़ लगा रहे थे, वो रो रहे थे। आनंद उनमें से एक था जो कि निरंतर साथ चला था, पर उन्होंने जाते समय बस एक ही चीज कही, अप दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो, अपना दीपक खुद बनो, किसी पर भी निर्भर नहीं रहो। और आनंद जिसमें जिसने सबसे ज्यादा प्रकाश लिया था वही दुखी था, क्योंकि अब तक कभी ये न सोचा ये कभी छोड़ के भी जाएंगे, अब तक कभी ये न सोचे कि ये प्रकाश भी लौट जाएगा, इसी प्रकाश के ऊपर निर्भर थे। यहां तो अपना दीपक खुद बनना है। मीठे बच्चे, आज के साकार महावाक्य क्या करो, अपने दीपक की संभाल खुद करो, किसी पर भी निर्भर ना रहो, निर्भरता मृत्यु है। डिपेंडेंसी इज डेथ। आत्मनिर्भरता ही अमृत है। और मन कब किस पर सूक्ष्म रीति से निर्भर हो जाता है हमें भी नहीं पता चलता। तो ये मार्ग तो अकेले का है, एकांगी पगदंडी है, स्लोगन एक ही है, एकला चालो रे। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा कि अपने दीपक की संभाल खूब करो, क्योंकि हवाओं में क्या है, माया का तूफान है, चहुओर तूफान ही तूफान है, तुम्हारी माया के साथ बॉक्सिंग है। कभी यहां गिरते हैं, कभी वहां। कल की मुरली थी, बाप से अलग हुआ और गया। अप दीपो भव, उसका पाली भाषा में है ये शब्द। इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है बी अ लाइट अन टू योर सेल्फ, अपना प्रकाश खुद बनो, या कुछ लोग इस तरह कहते हैं बी एन आइलैंड अन टू योर सेल्फ, अपना द्वीप खुद बनो। इसके सात अर्थ है। सबसे पहला, आई रिपीट, पहला अर्थ है सेल्फ इंस्पिरेशन, खुद के लिए प्रेरणा खुद ही बनना है। कोई दूसरा मेरे लिए प्रेरणा बने, कोई दूसरा मेरे लिए आदर्श बने, कोई दूसरा मुझे ये करके दिखाए, दूसरे को देखूं फिर मैं करूं, ये नहीं। स्वयं के लिए प्रेरणा स्वयं बनना है, स्वयं के लिए मोटिवेशन, स्वयं के लिए इंस्पिरेशन, स्वयं के लिए प्रेरणा स्रोत खुद ही बनना है। मैं ही हूं मेरा रहनुमा, खुद की प्रेरणा खुद ही बनना, स्वयं का दीपक स्वयं बनना। जिसको हमने प्रेरणा स्रोत समझा था, अगर एक दिन उसकी कमी दिखाई दे गई तो कैसे निकालेंगे भैंस पानी से? फिर दुखी हो जाएंगे कि इसको तो हमने अपना आदर्श समझा था, बड़ा योगी समझा था, आज सुबह सुबह उसको योग में झुटका लेते हुए देखा है, सारा सम्मान गया। दूसरा, सेल्फ रिलायंस अर्थात आत्मनिर्भरता अर्थात स्वनिर्भरता, किसी पर भी निर्भर नहीं, कोई हमारी बैसाखी ना बन जाए, सारी बैसाखियां टूटनी है। ये मार्ग अकेले का है, बिना बैसाखी के चलने का है। लंगड़ लंगड़ के चलने की आदत है और फिर बैसाखी का सहारा लिया, और बैसाखी जिसकी है उसने बैसाखी अगर छीन ली तो धड़ाम से गिरेंगे। आज की मुरली में चौथी मंजिल तीसरी मंजिल, हमेशा काम को पांचवी मंजिल का, आज चौथी बना दिया, और गिरने के बाद उठना बड़ा कठिन है। फिर से उठना तो दूर, दौड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, पहले तो उठना ही कठिन है गिरने के बाद। इसके लिए गिरने नहीं देना है अपने आप को। ढूंढना है किन किन बातों पर मैं किसी और पर निर्भर हूं। चिंतन के लिए निर्भरता तो नहीं है किसी पर, वो भी बंधन बन जाता है। परामर्श लेना अलग बात है, राय लेना अलग बात है, पर जीवन के निर्णय किसी से पूछ पूछ के कर रहे। समस्या आ गई तो पहला काम है फोन करना, उठाकर पहले उसको बताना और फिर पूछना क्या करूं, अपनी बुद्धि को तो काम ही नहीं दिया है। सहज मार्ग है, समस्या आई फोन लगाओ पूछो क्या किया जाए, क्या करूं क्या करूं क्या, पहले खुद सोचा। उधार की जिंदगी चालू है, उधार का चिंतन, उधार का समाधान, उधार की मत, उधार के विचार, उधारी का जीवन, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता स्वनिर्भरता। पहले खुद तो सोचो, करके देखो, अगर गिरे अपने ही विचारों से किया हुआ निर्णय से गिरे भी तो सीखेंगे बहुत। तीसरा, सेल्फ एम्पावरमेंट, खुद को खुद में खुद ही शक्ति बननी है। आज कहा चुप रहो, ये गुप्त वर्षा अगर लेना है अंतर्मुखी हो जाओ, गुप्त बाप को याद करो, इतना सब तुमको मिला है, ये निराकारी खान तुमको मिली है, ये अविनाशी खान तुमको मिली है, ये सस्ती खान तुमको मिली है, ये एक ही बार मिलने वाली खान है, ऐसी खान तुमको फिर कभी नहीं मिलेगी, ये है ज्ञान रत्नों की खान। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, स्व सशक्तिकरण, आत्मा में खुद ही शक्तियां भरनी है, दूसरों की शक्तियों पर कब तक निर्भर रहेंगे? वो है हम निश्चिंत है, वो हमारी रक्षा करेगा, अगर गलती हो भी गई तो हमारा इंचार्ज, हमारा साथी या हमारा और कोई, या हमारे शहर का, गांव का, स्टेट का, जोन का, सेंटर का, शक्तियां स्वयं में स्वयं भरनी है। और शक्तियां भरने के लिए मौन चाहिए, एकांत चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, अध्ययन चाहिए, स्वयं स्वयं से बातें करनी है, स्वयं स्वयं से पूछना है। कल की मुरली में था, कल भी सुनाया, अपने पेपर की जांच खुद ही करो। पेपर हमने लिखा, दूसरा अगर जांच करके दे तो हम कहेंगे ये नहीं, गलत जांच किया है, हमें रीचेकिंग करनी है, इतने कम मार्क्स हो ही नहीं सकता, इसको इतने ज्यादा मार्क्स, ये तो हमसे कम होशियार है, कुछ तो फ्रॉड, कुछ तो गड़बड़ हुई है, पार्शियलिटी हुई है। ऐसा ही किया जाता है हमारे साथ, बचपन से यही हो रहा है। यहां पर भी भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी, यहां पर भी कुछ गड़बड़ है, करप्शन है, एजुकेशन सिस्टम ही गलत है। इसलिए बाबा ने क्या कहा कल, अपना पेपर खुद ही जांच करो, अब कौन सा करप्शन, कौन सी गड़बड़, दो अपने आप को फुल मार्क्स, किसने मना किया है? सशक्तिकरण, स्वयं स्वयं में शक्ति भरनी है। कैसे भरेंगे? चिंतन से, थिंकिंग, संकल्पों को जितना श्रेष्ठ बनाया जाता है शक्ति भरती जाती है। सारा खेल संकल्पों का है। व्यर्थ संकल्प से कल देखा त्रेता में पहुंच जाते हैं, मठ पंथ में बैठ जाएंगे सन्यासी उदासी बनकर। व्यर्थ संकल्प से देखा क्या होता है, जंगल में चले जाएंगे छत पर, जंगल में छत में पहाड़ों पर उदास होकर, दुखी होकर, पता नहीं ये रोक नहीं सकते, पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया, पता नहीं ये क्यों हो गया, करना तो नहीं चाहते थे फिर हो गया, पता नहीं मैं कौन हूं, ये क्या मैं था क्या जिसने ये किया, या कोई था दूसरा जुड़वा। स्वयं स्वयं में शक्ति भरनी है। अगला पी, प्रोग्रेस, सेल्फ प्रोग्रेस, स्व उन्नति, स्व का उत्थान। ये खेल है राइज एंड फॉल का, ये खेल है उन्नति और अवनति का, ये खेल है उत्थान और पतन का, ये खेल है अप और डाउन का। कल की मुरली में था, हाईएस्ट चार्ट उसका है जो कदम कदम श्रीमत पर है, जो श्रीमत पर ही नहीं है, उनके कदम में पदम कहां से होंगे? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी बात है सेल्फ प्रोग्रेस, स्व उन्नति। और जितनी जांच हम अपनी कर सकते हैं, उन्नति मेरी कितनी हुई है, दूसरा और कोई नहीं कर सकता, और दूसरे ने की तो उसमें हम दोष निकालेंगे, तुमको क्या पता? कोई अगर कहे क्या हो गया आज तुम्हारी स्थिति डाउन दिख रही है, कल से, कल तो ठीक थे, कहेंगे मेरे आज ज्यादा अच्छी है, तुमको क्या पता? कोई आकर कहे आज थोड़े उदास दिख रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना, जबकि हम गहन चिंतन की अवस्था में हैं। एकदम अतीन्द्रिय आनंद में अंदर से झूल रहे, और कोई आके कह दे आज कुछ डिप्रेशन जैसा लग रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा उसके ऊपर? किसको पूछते हो? पार परवाती पार ब्रह्म को पाने वाले, पाने की, बाप को पाने की, उसको पा लिया, अब क्या परवाह? खुश खैराफात हमसे पूछते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? दूसरों को क्या पता हमारे बारे में? याद गुप्त है, अदृश्य है, खजाने निराकार है, सब कुछ निराकार है, यहां तो स्थिति निराकार है, योग निराकार है, गुप्त का खेल है, गुप्त ही गुप्त है यहां सब कुछ। संगम युग गुप्त, बाप का आना गुप्त, बाप से मिलन गुप्त, याद गुप्त, ज्ञान गुप्त, माया भी गुप्त। उसके बाद में अगला एफर्ट, सेल्फ एफर्ट, स्व का पुरुषार्थ खुद ही करना है, स्वयं ही करना है। कौन आकर मेरे लिए पुरुषार्थ करेगा? कोई अगर कह भी दे आज तुम आराम करो, तुम्हारे लिए योग मैं करता हूं, योग तो कर लेगा पर अतीन्द्रिय सुख तो उसी को मिलेगा ना, हमको थोड़ी ना सोए सोए मिलेगा। दो व्यक्ति जंगल से गुजर रहे, घटाटोप अंधकार, पर एक के हाथ में लालटेन है, दूसरा निश्चिंत है क्योंकि साथी है, साथ साथ जा रहे हैं, रात अभी पूरी बाकी है, पगडंडी है, और एक समय आता है जिसके हाथ में लालटेन है, वो कहता है अब मेरा रास्ता दूसरा है। वो कहता है क्या? अब मैं कैसे जाऊं, मैं कहां जाऊं? ये तो पहले से ही सोच लेना था जब निकले थे, तब तो सोचा ही नहीं, उसके साथ चल दिए, सोचा बस ये हमारे साथ आना लास्ट तक चलेगा, पर कौन कब बीच से चला जाए पता है नहीं, बता सकते किसका पार्ट कहां खत्म हो जाए नहीं बता सकते, किसका रास्ता कहां से दूसरा हो जाए नहीं बता सकते। जिसकी जहां मंजिल वो वहां उतर जाएगा, और फिर आप कैसे जाओगे? वो चिल्लाने लगता है, दुखी होने लगता है, अब मैं कैसे जाऊं? तुम्हारे साथ तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरा मन, मेरी मंजिल दूसरी है, तो रोना पड़ेगा। खुद का पुरुषार्थ खुद ही करना है। अगला एनालिसिस, स्व का विश्लेषण, एक है संश्लेषण एक है विश्लेषण। दोनों करनी है, अपना ही एनालिसिस करना है, और एनालिसिस बड़ा नॉन जजमेंटल होकर करना होता है, बिना किसी पक्षपात के। जैसे हम दूसरों को जज करते हैं, ये सोचते हैं क्या कि ये गलती तो बहुत छोटी है? ऐसा नहीं, बस उसकी गलती है, जज ये नहीं सोचता है। कोई भी आ जाए सजा सुनाता है, वैसे ही अपना जज खुद बनना है, खुद का जज खुद, खुद का प्रकाश खुद, खुद का दीपक खुद, खुद का रहनुमा खुद, खुद का टीचर खुद, आगे आएगा टीचर, सेल्फ टीचिंग, सेल्फ टीचिंग, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एजुकेशन, खुद को खुद ही बैठ के सिखाना है। अब तुम गिरे, अब सीखो, अब तो सीखो, कब सीखोगे? इतनी बार चोट खाई, काम की चोट खाते चौथी मंजिल से नीचे, अब गिरे ना, अब फिर सीखो, जब जब गिरो तब तब सीखो। परिस्थितियां जितना सिखाती है उतना कोई नहीं सिखाता, किताबें इतना नहीं सिखा सकती, परिस्थितियां ज्यादा सिखाती है। इंग्लिश में कहावत है, योर लास्ट मिस्टेक योर बेस्ट टीचर, योर लास्ट मिस्टेक इज योर बेस्ट टीचर, तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर तुम्हारी जो अंतिम भूल है, अंतिम त्रुटि है, अंतिम गलती है, जो लास्ट गफलत की है, वो ही तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। तो ऐसी ये सात बातें हैं, किसमें? अपना दीपक खुद बनो इसमें, और खुद जलाओ अपना दीपक, और खुद संभाल करो अपने दीपक की। तो दीपक की भी और सात बातें हैं। सबसे पहला तो ये जो दिया है किसका बना होता है? मिट्टी का बना होता है। एक आलसी लड़का होता है, दिया तोड़ देता है। उसकी माँ कहती है जा जाके दिया लेके आओ। वो बड़ा खुश हो जाता है, एक तो मार नहीं पड़ती है और दूसरा उतना समय जाके मार्केट में थोड़ा घूमूंगा, पढ़ाई से थोड़ा बचा रहूंगा। दिवाली का मौसम है, बड़ा दिया था तोड़ दिया। वो खुशी खुशी जाता है, ज्यादा समय लगाता है, बहुत सारे दुकानें घूमता है, कोई पसंद का दिया नहीं मिलता और अंत में एक रंग बिरंगी दिया बड़ा सा मिलता है और बड़ा खुशी खुशी से लेके आता है, माँ को देता है। माँ भी खुश, रात में सोता है, एक स्वप्न देखता है, वो दिया उससे बात करने लगता है। वो कहता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं दिया हूं। वो कहता है तुम तो बड़े अच्छे हो, बड़े खुश हो, जलते रहते हो। वो कहते हैं नहीं, तुमको मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं दिया ऐसे ही नहीं बना, पहले मैं मिट्टी थी, लाल मिट्टी, और फिर एक व्यक्ति आया जिसने मुझ पर पानी डाला। मैंने कहा नहीं नहीं मत डालो, इतना ठंडा पानी। फिर उसने मुझे हाथों से मला, इतना दर्द हुआ मुझे क्या बताऊं, बहुत दर्द हुआ, ऐसा ऐसा निचोड़ा उसने। मैं चिल्लाते रहा नहीं नहीं, फिर उसने लेके पटका, तब तो बस मेरी जान ही निकल गई, इतना पटका मुझे। वहां तक भी गनीमत। फिर तो उसने एक चाक लाया और उसमें ऐसा घुमाया, मुझे ऐसा घुमाया, ऐसा चक्कर आने लगा, पूरा पूरी दुनिया घूमने लगी, चक्कर उल्टिया, पता नहीं क्या क्या होने लगा, दिमाग गर्म हो गया एकदम। मैं कहते रहा रुको रुको रुको, वो रुकता ही नहीं। और जब रोका और उसने बीच बीच में हाथ भी लगाया, ऐसे ऐसे किया, कितना दर्द हुआ। अब सोचा अब तकलीफ कम हुई, पर बाद में उसने मुझे आग में डाल दिया, तब तो बात मत पूछो, ऐसी जलन हुई, इतना चिल्लाया इतना चिल्लाया, पर आवाज सुनने को कोई नहीं था। पर जब बाहर निकाला तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी ताकत तो बढ़ गई है, मैं तो थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली हो गया। और फिर बाद में उसने मुझे रंगने के लिए दे दी, वो रंग तो मेरे नाकों में चला गया। पर जब रंग सूखा तो मैं कितना सुंदर बन गया। ये है मेरी कहानी। वो लड़का तो आलसी होता है ना, बड़ा सीखता है उससे, शायद सुधर गया होगा उठने के बाद। उसी से पूछना पड़ेगा क्या हुआ आगे। दिए में सात चीजें हैं। सबसे पहला दिया खुद, जो कि हमारा शरीर है। अगर हम चाहते हैं कि दिया कभी ना बुझे तो सबसे पहले यह शरीर स्वस्थ रहे। अगर हम चाहते हैं कि ज्ञान और योग की यह लौ सदा जलती रहे, ये शरीर संतुष्ट हो। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर मज्जुबैन पॉइंट नंबर वन क्या है? अभी मुरली सुना क्या है बताओ? खान पान की तुमको क्या करनी है? परहेज रखनी है, नहीं तो माया दिया बुझा दे। परहेज रखनी है, परहेज। तो शरीर सबसे पहला, तो ये मिट्टी का बना हुआ, पांच तत्वों का बना हुआ ये देह है। अगर यही ठीक ठाक नहीं है, तत्व ही हलचल कर रहे, तो दिया तो टूट जाएगा, बुझ जाएगा, मिट जाएगा। पहले तो दिया शक्तिशाली चाहिए, इसके लिए आग में डाल दो उसको, चिल्लाने दो बचाओ बचाओ आग आग। क्योंकि आग से जब निकलेगा, भट्टी से जब बाहर निकलेगा, तब बड़ा पावरफुल होकर निकलेगा, शक्तिशाली होकर निकलेगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा। पहले तो इस शरीर पर काम करना है, शरीर को स्थिर करना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, एक एक कर्मेंद्रियों को तपाना है। क्योंकि एक एक कर्मेंद्रिय में दुर्गंध भरी है, विकारों की सड़ांत है, शीतल बनाना है, सुगंधित करना है एक एक कर्मेंद्रियों को। एक दिन का खेल नहीं, लंबा समय का अभ्यास चाहिए। चंदा तक पक्का सा रास्ता बनाना ए दिल, एक दिन का ये किस्सा नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, लंबा समय चाहिए। तो पहले तो शरीर, दूसरी बात घृत, तेल, घी, ज्ञान का घृत इसमें डालते रहना है। थोड़ा सा कम हो गया तो बुझ जाएगा, निरंतर डालते रहना। कब तक डालते रहना है? डालते ही रहना है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक। हॉलिडे है ही नहीं इसमें, वो सन को कोई हॉलिडे नहीं होता है, सन हैज नो हॉलिडे। सन को संडे होता है क्या? सन आगे सोचे आज तो मैं आराम करता हूं, बहुत हो गया ये धरती में, वो रोज रोज क्या है ये, आज मुझे आराम करना है, आज मैं जाता हूं कहीं दूसरे मिल्की वे, दूसरे तारामंडल में जरा घूमने जाता हूं और अपना काम किसी को दे दे, चांद को दे दे, तू कर भाई। चांद तो स्वयंभू नहीं है ना, आज के मूल्य में तो कहा है तुम लकीएस्ट हो, तुम ज्ञान सितारे हो, तुम ज्ञान सूर्य हो, तुम ही ज्ञान चंद्रमा हो, चारों चीजें तुम ही हो आज की साकार मुरली। तो ज्ञान डालते रहना है, कब तक डालते रहेंगे? कब तक चिंतन करते रहेंगे? क्लास पूरा कर लिया, हा चिंतन पूरा हो गया, डालते जाना। ये नहीं समझना ज्ञान पूरा हो गया, ये नहीं समझना मैंने बहुत समझ लिया। ये गुह्य भी है, गुह्यतम भी है, तीन चार दिन पहले मुरली में था, ये गुह्य भी है और गुह्यतम भी है, दोनों चीजें। जितना जितना ज्ञान जानते जाएंगे उतना उतना पता चल जाएगा ये कितना गहरा है, कोई था ही नहीं है इसकी तो, अथाह है, इतना ज्ञान है, अक्षर अक्षर में ज्ञान समाया हुआ है। तो दूसरा काम क्या करना है? ज्ञान डालते जाना है, अर्थात ज्ञान की समझ को बढ़ाते जाना है, और हर व्यक्ति की समझ अपनी अपनी, हर एक से सीखना है। जगदीश भाई थे, हर एक का क्लास सुनते थे, क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ तो नया है जो बताएगा, कुछ तो ऐसा है जो एकदम नया है। एक बहन कल आ रहे थे, उधर से जा रहे थे सेंटर से एयरपोर्ट, तो एक बहन पीछे, छोटी बहन थी, बैठी थी, वो कह रही थी, जो हम मुरली का डिस्कशन चालू था गाड़ी में बैठ के, मुरली में था बीमारी में भी राजी रहो, कल की मुरली में था ना सुबह की, बीमारी में भी राजी रहो, राजी खुशी रहो। तो वो कहती थी, भाई जी मैं आपका आपको एक अनुभव सुनाती हूँ मेरा, तो मुझे ना बीमारी हो गई थी टीबी, और मैं बार बार बीमार रहती थी। तो उन्होंने कहा बहन ने कि अभी तुम कुछ दिन के लिए घर चली जाओ, थोड़ा सा आराम करो। उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, और ऐसा बाबा के साथ योग लगाया पावरफुल। वो कहती है कि 2 बजे के बाद तो मेरी नींद, मैं नींद कर ही नहीं सकती, एकदम टूट जाती है, पता नहीं बाबा आता है और मुझे जगाता है, उठ उठ। पूरी हिंदी भी नहीं आती थी, वो अपनी मिक्स भाषा हिंदी और उधर की, तो कैसे कैसे अनुभव है आत्माओं के, बीमारियों के, बीमारियों में कैसे मदद की और कैसे उठ के खड़े हो गए। वो कहते हैं लगी कि 1-2 महीने में मैं ठीक हो गई, मैं तो इतनी बीमार थी और बार बार टीबी होता था, ये होता था, वो होता था, कुछ होता था, तो बाबा ने ठीक कर दिया। उधर गए थे हम, वहां पर कर्फ्यू चालू था, एक माता को इतना नशा, इतना नशा, सारे दिन भर कर्फ्यू, पर मधुबन उसको जाना था, रात को 1-2 बजे सेंटर पहुंची अंधेरे में कि मुझे जाना है, बहुत नशा। अभी अभी ज्ञान में 4 महीने हो गए खाली, इसीलिए नशा जाता है, इसीलिए भी नशा जाता है। तो प्यू प्यू बोले बोल सदा अनमोल। मुरली में है आज प्यू प्यू बोल सदा अनमोल। गीत था कोई, पता नहीं कौन सा गीत है, प्यू प्यू बोल सदा अनमोल। तो ज्ञान डालते जाना है। दूसरा, तीसरा काम योग की घृत, योग की बाती विक, ये जो बाती है योग की बाती, पर ये बाती किसमें डूबी हो, ज्ञान में। अगर ज्ञान सूख गया, ज्ञान है ही नहीं, तो बाती खुद जल जाएगी। इसके लिए योग का आधार ज्ञान है। लोग कहते हैं ज्ञान ये योग से, ज्ञान भी ना मत सुनो ज्यादा, ये क्लास है चिंतन, ये सब बाबा ने कहा है, कहा है, बस आत्मा समझ के बाप को याद करो, और बाकी क्यों चाहिए, हटाओ ये सब चिंतन बिंतन, लिखना भाषण पॉइंट्स, क्या जरूरत है इसकी, मैं आत्मा हूं बाप को याद करता हूं बस। योग का आधार ज्ञान है, ज्ञान को छोड़ के योग नहीं हो सकता। कोई कहते हमें योग की कोई अच्छी सरल सी विधि बता दो बस, ज्ञान मुरली तो सुनते हैं ना, बस हो गया, और क्या चाहिए, मुरली सुनना ज्ञान है क्या केवल, वो तो एक प्रथम सोपान है। अगर मुरली की सीढ़ियां है ज्ञान की, तो उसका पहली स्टेप है ज्ञान सुनना, आगे बहुत सारे सोपान है, बहुत सारी सीढ़ियां है, बहुत सारे स्टेप्स है। यही बैठे रहोगे क्या जीवन भर, आगे भी तो बढ़ना है। तो योग को बढ़ाना है, योग की विधियां खोजनी है, नई नई विधियों से योग करना है, एक ही विधि ना हो, नई नई विधि। कभी सतयुग से चालू करो, कभी द्वापर से चालू करो, कभी फरिश्ता से चालू करो, कभी सीधा परमधाम से चालू करो। हमेशा शरीर में मैं आत्मा बैठी हूं यहां से चालू करने की आवश्यकता नहीं है। वैरायटी योग हो, कलरफुल योग। उसके बाद में चौथी बात, दिया ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां पर तूफान ना हो, हवा ना हो, आंधी ना हो, और ऐसा निर्जन स्थान है सत्संग या संगठन। संगठन के बीच में रहना हमेशा, वहां पर आंधी नहीं आती है। यज्ञ के किले के अंदर रहना विकर्म नहीं होगे, किले से बाहर जाते ही पाप होने लगेंगे। लोग मधुबन में आते हैं यहां सब ठीक रहता है, जैसे ही उधर आबू रोड से ट्रेन चालू हो जाती है माया चालू हो जाती है, उधर के विचार आने लगते, उधर के संकल्प आने लगते, और रूम पर और घर पर पहुंचते पहुंचते यहां का असर 10 दिन चलता है, और 10 दिन के बाद जैसे थे सेम वैसे ही, वही डिस्टर्बेंस संपूर्ण रूप में प्रकट अवतरित हो जाता है। और मधुबन में गए थे ये स्वप्न रह जाता है एक, जिसकी जरा भी कुछ याद नहीं आती है। किस में रुकना है स्वयं को, संगठन के किले के अंदर, सत्संग के अंदर। अगर कोई ऐसा सत्संग नहीं है, ऑडियो विजुअल सत्संग, ऑडियो विजुअल सत्संग, रोज एक शक्तिशाली क्लास सुनना, उसकी पॉइंट्स निकालना, एकांत में बैठना, और क्लास जहां एंड हो गई है वहीं एंड नहीं हो जाना, उसके आगे फिर अपना चिंतन चालू करना। वो तो एक आधार था चिंतन का, शिला थी चिंतन की, अब अपना नया चिंतन चालू करना। वक्ता ने अपनी बात बता दी, पर वो वहीं तक पूरी थोड़ी होती है, उसके बाद तो विशेष आगे की बातें चालू होती है। उसने 10 बातें बताई, हम आगे की 15 बातें सोचे। उसने एक पहलू बताया एक बात का, एक ही पहलू था वो, उसके साथ और 10 पहलू जुड़े हुए, एक व्यक्ति कितना बताएगा, और वो उसका अपना दृष्टिकोण था केवल। हम उसको और आगे बढ़ाए, जैसे अभी जो सुना रहे अपो दीपो भव, ये केवल एक ही पहलू बता रहे, इसके और 10 पहलू आप निकालना आज दिन भर सोच सोच के, चिंतन कर करके। फिर उसके बाद दिए को कहां रखा जाता है, ग्लास में रखा जाता है, होता है ना, अगर आंधी बहुत है तो क्या कहते हैं उसको, कोई नाम है कांच का, कुछ नाम है उसको, एक आवरण, वो जो आवरण है, वो आवरण है धारणाओं का, वो आवरण है श्रीमत का, वो आवरण है मर्यादाओं का। चाहे आंधी कितनी भी चल रही हो, परंतु द्वावरण हो तो कुछ नहीं होगा, सुरक्षित रहेंगे। श्रीमत को पकड़ के रखना है, मर्यादा को पकड़ के रखना है। हाईएस्ट चार्ट उसका है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं, कल की मुरली। और ऐसे जो वाक्य आते हैं मुरली के, उनको पकड़ के रखना है जोर से। तो जोर से बजा दिया एकदम, थोड़ा ज्यादा ही जोर से बजाया। तो ये जो ग्लास पहन के रहना बॉक्सिंग माया से है, भूसा लगाएगी एक। उसके बाद दिया किसे जलाएंगे? चकमक पत्थर होता है, पत्थर एक चकमक, फ्लिंट कहते हैं, और क्या नाम है उसका? झूलचक, चकमक ही ना, तो धूलचक नेपाली में। तो चकमक पत्थर होता है। दृढ़ संकल्प की तीली क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प की तीली। कितने हो गए? छह, सातवा। दृढ़ संकल्प चाहिए, दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता कम, सफलता कम, सफलता कम हुई अर्थात दृढ़ता कम थी। फिर से दृढ़ता का संकल्प करना है, और दृढ़ता बढ़ाने के लिए उसको रिपीट करना है, दृढ़ता बढ़ाने के लिए उसको देखना है, विजुलाइज करना है, दृढ़ता बढ़ाने के लिए उसके महत्व को जानना है। अमृत वेला आज हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, कल हुआ परसों नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता कैसे आएगी? अमृत वेला की किताब लो और अमृत वेले के बारे में पढ़ते रहो दिन रात। ज्ञान की कमी है, पश्चाताप नहीं करते रहने, आज भी गया, आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। करना है तो ही होता है, तो करना है। यह संकल्प आएगा जब उसके महत्व का पता चलेगा, महत्व को पता चलेगा उसके, कि महत्व रोज पढ़ते रहना, ज्ञान डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। दिया बुझ रहा है, सोच रहे क्यों बुझ रहा है, क्यों बुझ रहा है, कुछ भी इधर ज्ञान कम हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश अंदर डालो। ज्ञान तो डालते नहीं और फिर दुखी होते रहते, उदास होते रहते, सोचते रहते ऐसा क्यों वैसा क्यों, व्यर्थ संकल्प। सोचते सोचते त्रेता, सोचते सोचते सन्यासियों के मठपंथ। अभी अभी करना है, कल सुना ना, नहीं तो पूछ ही नहीं थी उसको। सातवा, हिलाते नहीं रहना है इसको। हिलता डुलता रहेगा ना दिया तो तेल गिर जाएगा, बाती दिया ही टूट जाएगा। एक तो स्थिर रखना है, जो जितना हिलेगा हिलते रहेगा दिया, इधर से उधर रखा, उधर से उधर रखा, अर्थात परसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी। जो एक अभ्यास कर रहे हैं उसी को लंबा समय करते रहना है। फटाफट नहीं सोचना है अभी 3:30 बजे उठ रहे, अरे कल से सीधा 3 बजे उठता हूं, परसों से 2:30 बजे उठता हूं, उसके बाद 2 बजे और उसके बाद सीधा 8। चार दिन पूरा अच्छा कर लिया, एकदम सब दिन रात सेवा कर ली, और उसके बाद अब थोड़ा रिलैक्स भी तो चाहिए, थोड़ा सब गया, अब निकालो वापस पानी से। तो ये लड़ाई है हमारी किसके साथ? निर्बल की लड़ाई है बलवान के साथ। ये कहानी है दिए और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद था पवन चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में ज्योत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन। भगवान की ये कहानी है दिए और तूफान की। तूफान बहुत शक्तिशाली है। कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मसल 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 ने मचल रहा, झाड़ हो या पहाड़ दे वो पल भर में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा, एक नन्ना सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, दुरूह दुख आया दिए पर, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा, सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, घनघोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने, तब दिया दुखियारा वह बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका, उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का, चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं दौड़, उसने बीड़ा था उठाए रे भलाई का, हुआ नहीं वो निराश, चली जब तक आस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से, बार बार वार कर अंत में हार कर, तूफान भागा रे मैदान से, अत्याचार से उबर, जली ज्योत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति।
जग में जोत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा, अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। उसने हमला किया, एक नन्हा सा दिया उसने हमला किया, अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मर ना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने,
तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की बाजी प्राण की बाजी प्राण की बाजी प्राण की चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की ये कहानी है दिए की और तूफान की लड़ते लड़ते वो थका फिर भी कुछ ना थका उसकी चोट में था बल रे सच्चाई का चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर उसने भीड़ा था उठाया रे भलाई का हुआ नहीं वो निराश चले जब तक सांस उसे आस थी प्रभु के वरदान की ये कहानी है दिए की और तूफान की सर पटक पटक पग झटक झटक ना हटा पाया दिए को अपनी आन से बार 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 कर अंत में हार कर तूफान भगा दे मैदान से अत्याचार से उभर जली चोट अमर रही अमर निशानी बलिदान की ये कहानी है दिए की और तूफान